फिर इसके बाद आप देखिए तीसरी चीज है ज़कात देना। थर्ड थिंग जो इस्लाम की बेस में आती है वो क्या है, ज़कात देना। कब फर्ज होती है, जब किसी के पास एक खास निसाब हो, तकरीबन 87 ग्राम सोना या इसके बराबर किसी चीज, जब उतनी नकदी का इंसान मालिक हो जाए तो पूरा साल वो चीज उसके पास रहे तो एंड पे 2.5% यानी 2.5% जो है, यानी 1 लाख रुपया, तो उसमें से आपने 2,500 सिर्फ एंड पे ज़कात देनी है और इसका एक पूरा निसाब है। अब आप देखिए कि ज़कात के बारे में भी हम सोचें, हम बाज़ दफ़ा इसके ऊपर बहुत ही केयरलेस हो जाते हैं, कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है, चलो हम सदका तो कर देंगे, लेकिन इसमें लिखत पढ़त आती है और इसको ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपके पास इतनी इस्तेआत नहीं कि आप सदका दें तो पहले ज़कात पूरी करें, ये लाजिम है। औरतें अपने माल की ज़कात देंगी, मर्द अपने माल की देंगे। अगर मर्द बीवियों की दे देते हैं तो ये उनका एहसान है, हो जाएगी, लेकिन अगर मर्द ज़कात अदा नहीं करते तो बीवियों को खुद ही अपने माल में से देनी पड़ेगी। फिर चौथी चीज़ देखिएगा, बैतुल्लाह का हज करना, उस शख्स के लिए जो सेहत और माली एतबार से वहां तक पहुंचने की ताकत रखता हो। ये भी अल्लाह की शान है कि हज फर्ज ही तब होता है जब पांचों शरायतों, चार शर्तें मर्द औरत में इकट्ठी हैं लेकिन औरत में एक एक्स्ट्रा है, और वो क्या कि उसके साथ उसका महरम भी हो, तो इसकी भी दुआ करनी चाहिए। हदीस में आता है कि जिसको कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैं हज करूं, तो वो चाहे यहूदी हो के फौत हो या नसरानी। क्यों? क्योंकि यहूद और नसारा के दीन में हज नहीं था, तो अल्लाह के नबी ने उनसे मुमासलत दे दी। फिर पांचवी चीज आती है, रमजान के रोजे रखना, यानी रोजे की नियत से खाने पीने और हर तरह की इस चीज को जो रोजा तोड़ दे, इससे फजर से लेकर मगरिब तक बाज रहना, ये रोजे की हैसियत है। अब देखिए ये हदीस सिर्फ इन पांच चीजों पे है ना, अगर हम इन पांच पे अपना अमल देखें, जहां कमी मिले उसको देख लें, और मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि अगर हम पीछे से चले ना, ओवरऑल उम्मत मुस्लिमा, रोजे बहुत लोग रखते हैं, इवन वो लोग भी रोजे रखते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, वो रोजा रख के सारा दिन सोते रहेंगे, वो रोजा रखेंगे, रोजे पे सबसे ज्यादा अमल है। देखिए अब हम उल्टा चल रहे हैं, रोजे पे सबसे ज्यादा अमल है। फिर उसके बाद आप देखिए कि दूसरी चीज इससे पीछे क्या थी, जी बताइए, हज करना। हज का किसको शौक नहीं है, मारे बांधे कर लेते हैं, बाद दफा नकली महरम बना के भी कर लेते हैं, तो गोया कि हज का भी हमें बहुत शौक है। तीसरी चीज है ज़कात है। मैं समझती हूँ कि आज के दौर में भी मुसलमान सदका बहुत देते हैं, ज़कात तो देते ही होंगे, मेरा अपना गुमान है, कम लोग हो ना हो लेकिन ज़कात भी लोग देते हैं। उससे ऊपर चलिए नमाज, कितने परसेंट लोग नमाज पढ़ते हैं आपको पता है? एक ये इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने आज से कुछ साल पहले एक रिसर्च करवाई थी पूरे पाकिस्तान के लोगों की कि कितने लोग जो है वो नमाज पढ़ते हैं, और आपको पता है कि हमारे मुल्क के तकरीबन 5-6% लोग नमाज पढ़ते हैं, 95% 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। और फिर जिन्होंने पढ़ी, उनमें से जब उन्होंने रिसर्च की कि इनमें से कितने लोग तर्जमा जानते हैं, तो शायद सिर्फ 2% लोग जो नमाजी हैं वो नमाज का तर्जमा जानते हैं, 98% जो वो नहीं जानते। कमी नमाजों से शुरू होती है, और आगे ऊपर आप शहादतैन पे देखें तो इसमें तो बहुत ही सारी बात है ना। तो अब आप देखें कि हम बात जो करके आए थे, जिसको मैं खुलासा कर दूं कि हम दीन की बात करते हैं तो हमारा तो अपना दीन पूरा नहीं। अगर ये पांच उंगलियों के टिप्स में हम इन पांचों चीजों को लिख लें और एक एक के बारे में खुद अपने आप से पूछें, हम औरतें आप कहेंगी हम कैसे जाएं मस्जिदों में, ठीक है हमें मस्जिद का अल्लाह ने मुकल्लफ नहीं किया, क्योंकि औरत हर वक्त बाहर जाने की पोजीशन में नहीं होती, और पसंदीदा अमल भी नहीं औरत का हर वक्त बाहर रहना, औरत का ठिकाना घर है, वह कर नफी बुयूती कुन, औरत बाहर जाती है तो घर में दिल ही नहीं लगता। हम औरतें क्या करें, यानी जाहिर हम तो औरतें ही हैं ना, हमें तो अपनी फिक्र है, मर्द तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुकल्लफ हैं, उनको मालूम भी होती है इस बात का, अब हम क्या करें। यानी मिसाल है कि आप जैसे हैं, हम अपने आप को अपने अपने स्टेटस को देखें, पहली बात यह कि हम अपने घरों में जो ही नमाज का वक्त हो उसी वक्त जमात के साथ नमाज का एहतमाम करें, चाहे माँ बेटी हैं, बहू सास हैं, दो औरतें हैं, तीन हैं, हर घर में एक या दो औरत, दो औरतें तो होती हैं ना, मासी है, मेड है। आप घड़ी देख लें कि अगर 5:10 पे अजान होनी है, 5 बजे सारी औरतों को कह दें वजू करें, सब इस कमरे में बैठ जाएं और नमाज पढ़ लें, ये आपका फर्ज है। दूसरा फर्ज जो हम औरतों का है ना, जिससे बहुत सारी औरतें माशाल्लाह आजकल बहुत ही अपने आप को दूर समझती हैं, वो कहें कि अपने घर के मर्दों के लिए ऐसा माहौल बनाना कि मर्द मस्जिदों में जा सकें। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आज हमारे मर्द मस्जिद की नमाज के आदी नहीं है, तो ज्यादा ना भी हो तो 50% तो हमारा हिस्सा है, माने के ना माने। औरत हर बात मनवा लेती है, नमाज में जाना क्यों नहीं मनवाती, घर का माहौल ऐसा बनाए, हालात ऐसे बनाए। और मर्द यकीन करें अपनी फितरत के एतबार से औरत की बहुत सुनता है, ये जो भी औरतें कहती हैं ना, मेरे मर्द मेरी नहीं सुनते, ये गलत कहती हैं। हर मर्द सुनता है, सिर्फ ये कि आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करने की जरूरत होती है। आप घर का माहौल ऐसा बनाए, क्या करें? अब आपको टिप्स दे दूं, कैसे करें? पहली बात है कि फजर से शुरू करना है ना, तो उसके लिए इख्तमाम रात से शुरू होगा। 10 बजे यानी ईशा की नमाज के बाद मैक्सिमम भी अगर आप लगाएं ना, तो आधा पौना घंटा घर की लाइटें बंद। मुसलमान अल्लाह के, देखिए अल्लाह के नबी की गवाही हमने ली है ना शहादत इनमें, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईशा के बाद जागना और फजर के बाद सोना मुझे पसंदीदा नहीं है। कितनी हदीसें हैं, सहाबी ने आके शिकवा किया अपने घर में रिस्क की तंगी का, कहा फजर के बाद सोते तो नहीं हो? कहा सोता हूँ। कहा रिस्क बंद होगा। आज हम कितना रोते हैं, रिस्क तंग हो गया, इकोनॉमी डूब गई, सौदे कैंसिल हो गए, कंसाइनमेंट रुक गए, कभी हम सोचते हैं कि हमारे सोने जागने से इसका ताल्लुक है? फरमाया कि फजर के बाद रिस्क बढ़ता है। हजरत फातिमा को अल्लाह के नबी ने कहा कि फातिमा फजर के बाद तेरा रिस्क बढ़ता है, आप घर का माहौल बनाए। यकीन करें अगर रात की नींद पूरी हो ना, तो फजर के बाद सोना बल्कि दोबर लगता है। फजर पे उठे क्यों ना, वो घर है जिस घर में से कोई फजर के वक्त में ऐसी खुशी की आवाजें ना आती हों जैसे ईद की नमाज पढ़ने की आवाजें आती हों। इसी शहर में मुझे हमेशा याद आते हैं, और उनके सदका जारिया के लिए मैं जिक्र कर देती हूँ, अंकल थे यूनुस साहब हैं, अब्बू के दोस्त थे, करोड़पति मिलियन नेरियन लोग। आज तो बहुत लोगों के पास पैसा है ना, हम उनको तब जानते हैं कि जहां इतने लोगों के पास पैसा नहीं होता था। उनके घर में फजर से पहले, हमने खुद रह के देखा हुआ है, फजर की नमाज से पहले जब 4-5 बजते हैं, बिलीव मी के सारा घर ऐसे हो जाते हैं जैसे इस वक्त हम दिन में। मुझे उनका वो 3-4 साल का बेटा याद आता है, सबसे छोटा था, तो बच्चे भी बड़ों को देख के उठो, और सबको कहते थे कुरान पढ़ो, और इतना अल्लाह ने उनको नवाजा था इतना। अब तो उनकी डेथ हुई है 2 साल हो गए शायद, यानी मैंने दौलत वाले घरों में से उनका घर अपने माइंड में रखा हुआ है, और दुनिया का हर काम उनके पास होगा लेकिन नमाज के वक्त में उन्होंने कहीं नहीं रोका। हमारे नाना अबू की झगड़े, हम बचपन में उनके घर जाने पे सिर्फ इसलिए रोते थे कि नाना अबू ने सुबह सुबह उठा देना, अब तो बच्चों को जरूरत ही नहीं को करता उठाता हुए। यानी मैं सोचती हूँ, आप नॉक किसी की करते हैं ना डोर को, टिक 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 3 दफा, खौफ जा रहा है कि पुलिस ना बुला ले कि हमें इन्होंने डिस्टर्ब क्यों कर दिया। अपने बच्चों को माँ बाप नहीं उठाते, बहू बेटों को कोई उठाए, कहते हैं ये एटिकेट्स के खिलाफ है। तो याद रखिए कि ये चीज हमारे खिलाफ पड़ेगी, हमें कभी खैर सच्ची खुशी मिल नहीं सकती। यानी सिर्फ लीस्ट हम अपनी 5 वक्त की नमाज को मस्जिद से जोड़े, आप 1 महीना दें हर एक हम में से, आप देखेंगे आपकी बीमारियां कम हो जाएंगी, सुस्ती कम हो जाएगी, ये हर वक्त जो बीमारियां तकलीफें परेशानियां ये कम, गुस्सा कम हो जाएगा आपका, आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे, आपको लगेगा मैंने कोई चीज पाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में भी जो लोग 5 वक्त के मस्जिद के नमाजी हैं उनके अंदर मैंने ये चीज़ देखी है, वो सबसे ज्यादा खुशगवार मूड में, सबसे ज्यादा हेल्दी, सबसे ज्यादा फ्रेश माइंड, सबसे ज्यादा जॉली। वजह क्या मिला के नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने भी कहा था कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, तो हमने इंशाल्लाह इस पे कोशिश करनी है। फिर एक और चीज़ जो हम औरतें कर सकती हैं वो ये है कि अपने घर के बचपन से बच्चों को आदत डाल दें, पोतों को, नवासों को। इसमें भी मेरे जहन में 1-2 घर हैं हमारे खानदान के ही हैं, फजर से पहले बच्चों को उठा के बिठाना, और बच्चे मस्जिदों के नमाजी और कुरान भी उसकी हैं। हम औरतें जो है अगर इसकी कोशिश करें ना तो बहुत आसानी से होता है। फिर अगर देखें आप उठ गई, आप कहती हैं मियाँ को उठाते हैं वो नहीं उठते, आप तो उठिए ना, बच्चों को उठा दें, लाइटें जला दें, सर्दियां तो हीट बंद कर दें, गर्मी है तो एसी बंद कर दें, खटखट करें आवाजें को। और ये उस वक्त कहने वाली बातें नहीं होती कि आपको अब नमाज के लिए उठाना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन जोड़ा वो है कि शौहर बीवी को पानी का छींटा लगाता है कि उठो नमाज पढ़ो, और बीवी शौहर के ऊपर पानी फेंकती है कि उठो। अब ये कब होगा? जब अंडरस्टैंडिंग होगी ना, पता चला आधी रात को लड़ाई शुरू हो गई। ये एकदम नहीं होते मामलात, इसके लिए पहले से प्लानिंग करनी होती है। हम बैठें, सोचें, जहन साजी करें, और फिर उसके ऊपर जब हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला भी मदद करता है। और जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को देखा होता है इस तरह करते हुए, फिर उनके लिए नमाज कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं रहती। ये एक हमने कैलेंडर इस साल बनवाया, ये बड़ा अच्छा, ये हैबिट कैलेंडर है बेसिकली। इसमें पूरे साल के अंदर पूरी फैमिली को बिठा के, जैसे आप अपने पूरे फैमिली मेंबर्स 15 मिनट दे दें रोज किसी भी वक्त में जब सारे घर वाले इकट्ठे हों। इसमें ये देखें, जैसे ये जनवरी है ना पहला महीना, ये इसका थीम था शुक्रगुजारी। 30 दिन है महीने के, तो हर दिन एक टिप है, और इसमें हर एक में कोई शुक्र की बात है। आज माँ बाप का शुक्रिया अदा करना है, आज हस्बैंड का करना है, आज शुक्र की कोई बात करनी है, किसी को थैंक यू बोलना है। प्लस इसमें ये एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादति। पूरा महीना लगा के ये दुआ भी पढ़ लेंगे तो याद होगी। फिर इसमें ये 3 चेक है, अगर 5 नमाजें आज अपने वक्त पे पढ़ी हैं तो इसको चेक लगाना है। आपने सुबह शाम के अस्कार किए तो ये वाला इधर चेक लगाना है, और डेली टिप किए तो इसको लगाना है, और इसमें मंडे और थर्सडे रोजों के भी रिमाइंडर मौजूद हैं। अब 30 दिन जब शुक्र पे पूरी फैमिली बात करेगी, और इसमें इतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला माशाल्लाह कि बच्चे माँ बाप को बता रहे थे, वो आरफा की बात याद आ रही है, वो शायद 14 किस डेट पे, तो कह रही आज सुबह मेरे बच्चे ने इधर से पढ़ गए, अम्मी आज आपने अब्बू को आई लव यू कहना है, आज आपने अब्बू का शुक्रिया अदा करना है ना। तो ये इस तरह से फिर हर महीने का फर्क है। ये दूसरा जो फरवरी था, ये टाइम मैनेजमेंट, इसमें पूरे महीने में टाइम मैनेजमेंट के मतलब बातें हैं। यहाँ दुआ भी है इसमें कि अल्लाह मुझे सुस्ती से बचाओ, और इस तरह की सारी। फिर इसी तरह हर इसमें, अब मार्च जो चल रहा है इसका थीम क्या है, आज क्या डेट है, मैं आपको पढ़ के सुना दूँ आज की क्या डेट है। आज 7 है जी, गिव चैरिटी, अल्लाह लव्स दोस्त हु गिव चैरिटी, यानी आज सदका देना इस नीयत से कि अल्लाह मुझसे प्यार करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज डाला है ये मेरे कहने से। अब आज अगर सारे घर वाले सदका बॉक्स में इस सोच से डालना है कि अल्लाह लव्स दोस्त हु गिव चैरिटी, अब कल की पढ़ लें सारे इस एक, हमने ये माओ ने हर बच्चे का अलग लिया था, हर एक के कमरे में लगाएंगे, और वो अपनी अपनी चेक लिस्टें इससे बनाते हैं ना, और इससे फिर फैमिली कितनी क्लोज होगी ना। ये पूरा महीना इस पे हम बात करेंगे, फिर इसी तरह से अगले महीने का थीम एंगर है, गुस्से पे, गर्मियों में गुस्सा बहुत आता है, तो गर्मियों में पूरा महीना अपने गुस्से पे बात करनी है। और देखिए सेल्फ ग्रूमिंग है ना, अगर हम अपने आप को बदलना चाहेंगे तो अब इसी तरह ही बदल सकते हैं, वरना तो मुश्किल है। फिर इसी तरह स्माइल देना है, पूरा गर्मी की दोपहरों में आपने मई में सबको स्माइल देना है, तो ये स्माइल से मुतल्लिक हदीसें हैं। फिर इसी तरह इसमें ये फॉरगिवनेस है, जून के महीने में माफी है, सबको माफ करना है। तो बहरहाल ये बहुत ही एक अच्छी चीज है, कहने का मतलब ये कि अपने घर वालों को टाइम दें, छोड़ें कपड़े जूते जेवर ये सब मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ हमें इंसानों से दूर नहीं होना। अब आप में से कोई बात शेयर करना चाहें, कोई भी बात कि हमने आज जो थोड़ी सी बात की इसमें से क्या सीखा।
सबसे बड़ी जिंदगी की जो फिक्र, नमाज अपनी भी और अपने घर वालों की भी, वो अल्लाह ताला से हम शाम का वक्त दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम अपनी और अपने घर वालों की नमाजों की केयर करने वाले हों। और कभी भी मतलब इन बातों को हल्का नहीं समझना चाहिए, अगर हम कहते हैं तो जरा हमारे घर वालों को हमारे साथ तआवुन करना चाहिए, और घर में से अगर कोई बात कहे तो फिर हमें तआवुन करना चाहिए। और मोस्टली मैंने देखा है कि हम लोग भाग दौड़ में जिंदगी तो गुजार रहे होते हैं, बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें आके यही बात हो जाती है कि बहुत से ऐसा प्राइम टाइम होता है जो हम फजूल चीजों में गुजार रहे होते हैं। सबसे ज्यादा तो हमारी सोच ही है ना, जिसको हम कभी कहीं दौड़ा रहे हैं, कभी कहीं दौड़ा रहे हैं। अब कल ही का मौका है तो आप देखेंगे किसी ने नए ड्रेस पहन लिए, किसी ने पुराने पहन लिए, लेकिन वक्त तो गुजर गया ना। चाहे अब उसमें अपनी सोचों के जरिए अपना कितना वक्त अपना बर्बाद कर लें, अच्छी बातों को हम जाया कर लें, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको सब्र और शुक्र वाली जिंदगी दे। लेकिन उस वक्त को, वो वक्त तो गुजर गया, लेकिन अगर इंसान अपने ऊपर इन चीजों को हावी ना करे तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन हावी कर लेंगे तो बहुत नुकसान अपना ही हो जाता है।
जी आप बचिए, आप शेयर करें।
वालेकुम अस्सलाम। सर मैं तो ये कहती हूँ कि बजाय इसके कि हम जब बच्चे बचपन में हो ना, तो मैं कहती हूँ अगर लड़के हैं तो उनको बचपन से हर एक को मैं कहती हूँ कि उनको साथ टोपियाँ पहना के ना, तो उंगली लगा के साथ, तो बाप जो है अपने बच्चों को साथ मस्जिद में लेके जाए, और माँ जो है अपनी बच्ची को छोटी सी को वो खड़ा करे अपने साथ, क्योंकि जब ये करेंगे तो इंशाल्लाह ताला नमाजें खुद खुद पक्की हो जाएंगी। और माँ बाप का करना बहुत ही जरूरी है, यानी कि बच्चों को करवाना नहीं बल्कि हमें खुद करना है, जब हम खुद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चे वही करेंगे और इंशाल्लाह ताला उनकी नमाज बहुत पक्की हो जाएगी। और इसके साथ अपने आगे पीछे जो करते हैं उनको भी, अपने मोहल्ले में और सब रिश्तेदारों को भी साथ लेके चलना होगा इंशाल्लाह ताला।
जी मैदा,
मुझे लगता है जैसे जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना मतलब जाया ही कर दिया है। और एक और बात यह है कि मुझसे ज्यादा जो है वो मेरे हस्बैंड इस चीज में बहुत ज्यादा सख्त हैं, वक्त पे जो नमाज पढ़ना, चाहे रात को 3 बजे भी सोए उन्होंने उठना अव्वल वक्त में ही है, लेकिन अब बस एक बात है कि वो अभी जमात के साथ नहीं जाते, और मेरी ये दुआ है अल्लाह तआला से कि अपने बच्चों को लेके जमात के साथ जाए, लेकिन मुझे भी मुझ पर भी सख्ती करते हैं इस चीज़ में, बच्चों पे भी, कि नमाज होते ही जो है ना सब काम छोड़ के।
तो अब ये आप काम करें ना, नमाज की वो उनको फिक्र है तो जमात क्या फिक्र कर ले, इतना तो हक होता है बीवी का भी है कि नहीं, हक कितना कुछ बीवी करती है शोहर के लिए।
जब शुरू होता है मस्जिद के लिए फिर तो वो खींच खुंच के बच्चों को
पीछे लगा दें, बिलाल मौजिन पीछे लग जाएंगे तो ये ले जाएंगे, वैसे भी तो बच्चे दिन में और फरमाइशें करते हैं तो हम पूरी करते हैं ना, तो आप अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट करें कि ये बच्चे फरमाइश करें कि अब्बू हमें मस्जिद में लेके जाएं। करेंगे आप बिलाल? आज सुबह फजर पे अब्बू को कहना है मुझे मस्जिद लेके, रात को कह के सोना है कि मैंने फजर पे मस्जिद में जाना।
इंशाल्लाह।
आप कुछ कहना चाहते हो बेटा, बोलो, आपका दिल करता है मस्जिद में जाने को? आपका मौजिन, आपका तो बेटा नाम भी मौजिन है। गुड, आप तो मौजिन है, आप तो अजान दिया करो। जी इधर से आप, मारी आपने क्या अपने लिए लिया?
यही कि नमाज को इंशाल्लाह ताला सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, पढ़ते तो हैं मगर उसको हक अदा करके एक तरह से फिर से शौरी तौर पे सोच के पढ़ना है कि उसको उसके सही तरह से वजू करने, सही तरह से उसे खड़े होके नमाज, जिस तरह से अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें बार बार कुरान पाक में कहा कि नमाज को कायम करो, तो कायम करना यही है कि उसको टाइम के साथ पढ़ें, उसको खुशू वजू के साथ पढ़ें, सही तरह से अव्वल टाइम पे इंशाल्लाह ताला कोशिश करनी है कि नमाज पढ़ें।
तो नमाज में खुशू किस तरह आए, जिस तरह माशाल्लाह तर्जुमा भी आता है और पहली रकत में इतना पता चलता है कि क्या पढ़ रहे हैं थोड़ा, लेकिन उसके बाद फिर ध्यान ही दूर हो जाता है और
हदीस पे के सीटी है जन्नत के वारिस उसमें हमने टिप्स ली हुई है 10-12, आपको मैं उसका लिंक दे देती हूँ, फारिक बैठ के सुन ले, फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस कर सकते हैं।
जब सलाम फेरते हैं ना तो फिर शर्मिंदगी होती है,
वो इसी वजह से ना कि हमें कम्युनिकेशन नहीं होता, उसमें हमारे लिबास का ताल्लुक है, हमारे जगह का इंतखाब, हम खुद किस पोजीशन में, हर चीज मिल के नमाज की तैयारी कराती है। जी आप
जो आपने मेंशन किया था दफला मोमिनून, यही व्हाट्सएप पे भेजी है कल,
आजकल भेजिए।
हाँ जी,
तो फिर आप वो सुन लिया, उसमें खुशू का जिक्र है इंशाल्लाह। हाँ जी, आपने क्या सीखा?
मेरा दिल तो वैसे बड़ा बेचैन रहता है, कुछ घरों में कभी किसी घर में कभी किसी घर में जाने का इत्तेफाक होता है मुझे, जिस घर के बच्चे उनके बाप बच्चे चले जाएं मस्जिद, मेरा सारा दिन दिल खुश रहता है, मेरा बाग बाग दिल हो जाता है। तो कुछ ऐसे घर उसी में बेशक मेरे अपने या कोई अजीज, तो ऐसे नहीं मर्द उठ के जाएंगे घर में पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे घर में, या स्कूल की दौड़ लगी होगी, बड़ा ही दिल बेचैन रहता है सारा दिन, उसका असर मेरे दिल पे होता है। जो सुना अल्लाह उस पर हमें अमल करने की तौफीक दे, और अल्लाह हमारी नस्लों को भी ये लगा दे फिक्र।
अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड तो जाते हैं मतलब जमात के साथ, यहाँ पर जब पाकिस्तान में होते हैं 5-6 टाइम पे जाते हैं, और उनको होता है घर पे मतलब अब्बू हैं भाई हैं तो उनको भी जरूर आवाज देते हैं कि चले आए मस्जिद के लिए। तो जैसे बाहर हैं तो वहां पर जुम्मे के लिए लाजमी जाते हैं, बाकी अगर कोई एक आध नमाज आ जाए, वरना घर पे जब भाई वगैरह इकट्ठे होते हैं कजन्स तो जमात से नमाज करा लेते हैं वहां पे भी। और लेकिन मतलब मुझे कभी इनको कहना नहीं पड़ा कि आप जाएं, लेकिन फिर भी जैसे होता है ना कभी कहीं बाहर हैं तो फिर हम लोग दोनों ही फिक्र कर रहे होते हैं कि अच्छा नमाज का टाइम है तो हम लोग इसको छोड़े नहीं, कोई जगह ढूंढ लें, जरूर पढ़े। लेकिन कुछ मौके आ जाते हैं कि कभी बंदा कह लें कि पता एहसास होता है, लेकिन कह लें कि वो शायद शैतान उस वक्त हावी हो जाता है कि वो मतलब थोड़ा लेट हो जाती है, तो फिर वाकई बाद में दुख भी होता है कि हमने उस दूसरी चीज को प्रायोरिटी दे दी और इस चीज को पीछे कर दिया। तो सल्लम ये चीज जो है ना खत्म करते हैं।
कल जुमे के खुतबे में कारी साहब ने एक वाक्य सुनाया था, वो किसका था क्या था उसकी बारीकियों में गलती ना हो, लेकिन खुलासा क्या था कि वो बता रहे थे कि बाप जो थे वो इतने नमाज के आदी थे कि पहली रकत तकबीर उला से पहले मस्जिद में उनके बच्चे जाएं, पहली रकत से तकबीर यानी शुरू में छोड़ दे तो वो उससे नाराज होते थे। तो एक दफा उनके बच्चों में कोई जो था वो जमीन में काश्तकारी करता था, कमाद लगाता है, तो जब नमाज में हो गया तो वो नमाज के दौरान शामिल हुआ, या जुमे की नमाज थी तो उसके दौरान आया खुतबे के, तो बाद में उन्होंने पूछा कि तुम देर से क्यों आए हो मस्जिद में, तो उसने कहा कि मैं कमाद लगा रहा था और उसके लिए वो छोटे छोटे टुकड़े काटे होते हैं और उसको फौरन जमीन में लगाना होता है, तो मेरे थोड़े से रह गए थे तो मैंने सोचा कि अगर नमाज पढ़ने चला गया तो ये सूख जाएंगे, तो ये सूख जाएंगे तो फिर खराब हो जाएंगे, तो मैं फटाफट लगा दूं, उस देर देर में मेरा वक्त जो ऊपर चला गया। तो कहते हैं कि मस्जिद से जब नमाज पढ़ी तो सीधा उस खेत में गए और सारा कमाद उतार दिया, उखाड़ दिया, कहा कि इसमें कभी भी इस फसल में तुम्हें बरकत नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी नमाज लेट हुई है, तो अब नए सिरे से फिर लगाओ। आज हम देखें अगर यही असूल हम अपने बच्चों और अपने मर्दों को दे दें तो उनकी कमाइयों में बरकत खुद ही हो जाएगी, تو بہرحال آج جتنا کافی ہے انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے. چلیں اب جو سنا اس پہ عمل کرتے ہیں. چلیں جزاک اللہ خیر واسن جزا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.